नेक्स्ट टॉपिक है जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह अकबर, ये तो फितरत के वो असूल हैं कि जिनको पढ़ने और समझने के बाद ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। हम लोग भी क्या खूब हैं, लोगों से चाहते हैं कि वो बुर्दबार हों और ख़ुद गुस्सा करते हैं, इनसे चाहते हैं कि सखी दाता हों और ख़ुद बुखल करते हैं, इनसे चाहते हैं कि वो वफ़ादारी और भाईचारे का सबूत दें और हम खुद ऐसा नहीं करते। हम चाहते हैं कि कामिल आदमी मिले जो बेऐब हो। क्या ऊद बग़ैर धुएं के खुशबू देती है? ये बेटियों को जुमला बताएं। खुशबू लेने के लिए थोड़ा सा धुआं बर्दाश्त करना पड़ता है। पुरानी कहावत है कि कोई भी पूरा पूरा तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह की ज़ात है जो परफेक्ट है। लोग कहते हैं परफेक्ट, मैं कहती हूँ ये ना लफ्ज़ बोला करें। ना आवाज़ परफेक्ट हो सकती है, ना तस्वीर परफेक्ट हो सकती है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इब्ने रूमी के एक शेर का मफहूम है कि ये तो अजूबा रोज़गार है कि तुम दुनिया में कामिल की तलाश करो और ख़ुद कामिल ना बनो। देखिए ये जो पीछे मौजूद है रिश्ता लो, उस पर कितनी फिट बात है। हम ढूंढ वो चीज़ रहे होते हैं जिसमें कोई नक्स ना हो और हमारे अंदर हर ऐप मौजूद होता है। ज़रा सा सोचिए, गैप लीजिए। और किसी का कॉल, ईलिया अबू माजी कहते हैं, ऐ शिकायत करने वाले, जिसे कोई बीमारी नहीं, तुम बीमार बनोगे तो सुबह कैसे करोगे? ज़मीन में सबसे बड़ा गुनाहगार तो वो नफ्स है जो मौत से पहले ही मौत से बचने लगता है। तुम गुलाब का कांटा तो देख रहे हो, ये नहीं देखते कि गुलाब की पत्तियों पर शबनम के मोती भी हैं। जो आदमी ज़िंदगी को भारी समझता है, इसके लिए वो बोझ है। जो आदमी जमालियाती हिस यानी खूबसूरती की सेंस नहीं रखता, इसे ज़िंदगी में कुछ भी खूबसूरत नहीं लगता। क्या कहते हैं कि ब्यूटी आँखों में होती है, चीज़ खूबसूरत नहीं होती। आपकी आँखें उसको खूबसूरती से देखेंगी तो वो खूबसूरत होगी, और अगर आँखों में हुस्न ना हो तो बाहर कैसे मिलेगा? फिर इसी तरह से जब तक सुबह है इससे लुत्फ़ानंदोज़ हो लो। इसके ज़ायल होने का खौफ क्यों है? जब तुम्हारी खोपड़ी में कोई गम फिक्र घुस जाए तो इस पर ज़्यादा ना सोचो, इसे तूल ना दो। टीलों के परिंदों ने अपनी हकीकत जान ली, तुम इससे ज़्यादा नादान बनो ये शर्मिंदगी की बात है। देखो कि खेत किसी और का है, लेकिन परिंदे इसमें सुबह शाम करते हैं। लगता है ना किसी बहुत दाना ने ये जुमले बोले हैं, यानी एक एक जुमला एक एक जेम है। तो क्या सीखा? ज़रा सा इस पे बात करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। मकाफाते अमल क्या होता है? अमल का बदला, यानी जो करेंगे वही भुगतेंगे। अच्छा अमल अच्छी जजा, बुरा अमल या बुराई मिलेगी या सज़ा मिलेगी। और जैसी करनी वैसा भरना, यानी जैसा बीज डालेंगे ये है जैसी करनी, तो वैसी भरनी क्या है? वही फसल भरेंगे अपने दामन में। किसी की बहुत ही प्यारी पोएम है इस बारे में, यानी जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। यानी आप किसी को इज्जत देंगे ना तो इज्जत पलट के आपके पास आएगी, आप किसी को धोखा देंगे ना तो धोखा भी पलट के आएगा। कहते हैं कि आखिरत की फिक्र करनी है ज़रूर, जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर, उम्र ये एक दिन गुजरनी है ज़रूर, कब्र में मैयत उतरनी है ज़रूर। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। कितनी बड़ी बात है। और चंद अहादीस देख लीजिए। सही बुखारी की रिवायत, आपने फरमाया जो रहम नहीं करता इस पर रहम नहीं किया जाता, 6031। और दूसरी रिवायत सिलसिला सहीहा 2441, आपने फरमाया तुम रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा, और तुम माफ़ करो बदले में अल्लाह ताला तुमको माफ़ करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ज़रा सा गैप लें, सोचिए, है कोई शिकायत करने वाला जिसे कोई बीमारी ना हो? यानी बीमारी तो है, अगर आप बीमार बन ही जाएंगे तो फिर सुबह कैसे करेंगे? मुराजे के बीमार को भी ये सोचना है कि मैं बीमार नहीं हूँ। फिर ज़मीन में सबसे बड़ा गुनाहगार वो नफ्स है जो मौत से पहले ही मौत से बचने लगता है। जो इंसान जमालियाती हिस नहीं रखता, यानी जिसको खूबसूरती का एहसास नहीं होता, इसे ज़िंदगी में कुछ भी खूबसूरत नहीं लगता। और जब तक सुबह है से लुत्फ़ानंदोज़ हो लो। कल जो होगा देखी जाएगी। बाज़ लोग कल के अंदेशों में आज के दिन को भी ज़ाया कर देते हैं। और फिर इसी तरह जब तुम्हारी खोपड़ी में कोई गम घुस जाए तो इस पर ज़्यादा ना सोचो और इसे तूल ना दो। सारी बात का एंड अप क्या है? डोंट थिंक टू मच। और मैं एक ऐसे शौहर को जानती हूँ जिसने शादी की बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल, यानी आप कह सकते हैं कल्चर से लेके मुल्क तक, लैंग्वेज तक फ़र्क, उन्होंने एक बात कही अपनी बीवी को। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, सोचते हैं ये उसने ये कह दिया, ये उसको बुरा ना लग जाए, वो मेरे बारे में ये सोच रहा है, होता है ना हमारे कल्चर में, तो ख़ास तौर पे सास को बुरा ना लग जाए, नंद को ना लगे वो क्या सोच रही है, वो क्या। तो उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा डोंट थिंक टू मच। वो बीवी कहती है इस जुमले ने मुझे ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा दिया। जहाँ मेरे दिल में नेगेटिविटी आने लगती थी ना अपनी सास के बारे में, वो सोच रही है मेरे से वो खुश नहीं है, मेरी बात उनको अच्छी नहीं लगी, ये है वो है, तो वहाँ उनको अपने हस्बैंड की बात याद आती थी। और कभी उन्होंने कोशिश भी की ना उनको कुछ बताने की, कुछ सोचने कहने की, तो क्या हुआ, वो उन्होंने कहा कि बस छोड़ दो, ज़्यादा नहीं सोचना। तो बच्चियों को ख़ास तौर पे ये भी सिखाइए कि डोंट थिंक टू मच, कुछ नहीं होता। और याद रखिए एक कोड वर्ड है कि हर मौका आखिरी नहीं होता, दिस इज़ नॉट द लास्ट टाइम, इट्स ओके। बस मियाँ ने कहा बस अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, आप सोच लेते हैं हाय मर गए ये हो गया, वो कुछ नहीं होता, बंदे ने कहा अल्लाह ने नहीं कहा। तो इस तरीके से अपने आप को हमेशा एडवर्सिटी में स्ट्रांग रखना चाहिए, और जो वक्त अच्छा गुजर जाए वही अच्छा। आज भी मेरी सुबह किसी से बात थी, तो वो यानी आपको सिखाने के लिए बात करती हूँ कि शायद किसी को भी फ़ायदा हो। तो उनका इशू कुछ इस किस्म से था कि उनके हस्बैंड उनकी बैक फैमिली के साथ ज़्यादा खुश नहीं है, बात करते हैं गुस्सा करें इसी से बुनियादी, तो फिर इनको भी बुरा लगे तो जो भी हुआ। मैंने उनको सिर्फ एक बात कही कि आप कम अज़ कम 3 माह तक छोड़ दीजिए सब बातें, आपके हस्बैंड आपकी फैमिली के साथ कैसे हैं, जाते हैं नहीं जाते, फ़ोन करते हैं नहीं करते, देते हैं नहीं लेते, आप उसको भूल जाए, आउट ऑफ द पिक्चर कर दें। कभी कभी आपने कोई चीज़ क्लियरली देखनी है ना, तो आप बड़ा बड़ा करते जाते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, वो फुल होके सिर्फ अंदर का एक लफ्ज़ दिखता है कि ये ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ों को ऐसे ओवरलुक करना पड़ता है, निकाल दीजिए, आप स्नैपशॉट लीजिए और उसके बाद इर्द गिर्द को निकाल कर बड़ा करके जो चीज़ चाहिए उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ज़िंदगी का ये असूल है, अल्लाह ताला हमें समझने वाला बना दे। अगला टॉपिक है फसीहो बलीग, कलाम का टैक्स। ये क्या है इतना मुश्किल जुमला, आइए देखते हैं। खालिके कायनात और उसकी मखलूक, अल्लाह और इंसान के तई हमारा जो फ़र्ज़ है इसे पूरा करने में ही हमारी सआदत है। बोलना तो आसान है और कलाम की आराइश भी आसान है, यानी बोलें भी ये भी आसान है और कलाम कैसा खूबसूरत हो ये भी आसान है। मुश्किल तो इसे सिफाते हमीदा, बड़े कामों और बुलंद इकदार में ढालना, यानी बोलना क्या बड़ी बात है, ये देखिए बोलते क्या हैं, ये मुराद है। बस लोग बोलने के तरीके पे मर मिटते हैं और पता ही नहीं कि अंदर जो बात किसी ने बता दी वो कितनी बुरी बता दी, ये मुराद है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अता मुरूनन नास बिल बिर्री व तनसौन अनफुसकुम, क्या तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूल जाते हो। मुराद ये है कि दूसरों को कहते हो खुश रहो तो खुद तुम खुश ही नहीं रहते, और तुम दूसरों के साथ तो ऐसा मामला चाहते और ख़ुद नहीं करते। यानी मुराद क्या है कि इंसान जब भी कोई बात कहे, जब भी कोई बात सुने, तो उसको पहले सोचे, गौर करे, उसके ऊपर अपने आप को रखे कि आखिर मेरा अपना अमल कैसा है। और अल्लाह ताला कहते हैं क्या तुम इतनी भी समझ नहीं रखते, जो आदमी मारूफ का हुक्म दे खुद इस पर अमल ना करे और मुनकर से रोके और खुद बाज ना आए, हदीस सहीह के मुताबिक क़यामत में से आग में डाल दिया जाएगा, वो आंतों के साथ आग में ऐसे घूमेगा जैसे कोल्लू का बैल, यानी कोयले के बैल को घुमाई जाओ तो वो घूमता ही जाता है घूमता ही जाता है, इसी तरह से ये इंसान भी घूमेगा। दोस्त की इसकी हलाकत के बारे में पूछेंगे तो कहेगा मैं तुम्हें मारूफ का हुक्म दिया करता था, खुद इस पर अमल ना करता था, मुनकर से रोकता था, खुद इससे बाज ना आता था। बकौले शायर अरे ओ दूसरे को तालीम देने वाले, ये तालीम अपने आप को क्यों नहीं देते। और एक मशहूर वाइस हैं अबू माज और राजी, उन्होंने वाज किया, खुद रोए दूसरों को रुलाया, फिर बर जुबान ने शेर कहा, यानी शेर की जुबान में कहा जो गैर मुत्तकी लोगों को तकवा का हुक्म देता है वो ऐसा तबीब है जो खुद बीमार है लोगों को दवा देता है। अल्लाह अकबर, यानी खुद गैर मुत्तकी है, خود گناہوں سے نہیں بچتا، ڈرتا، لوگوں کو کہتا ہے تقویٰ رکھو، تو گویا کہ وہ بیمار جو دوسروں کو دوا دے. اور میرے سے بھی ایک مثال لے لے کہ وہ شمع جو خود تو جلتی ہے اور دوسروں کو روشنی دے دیتی ہے. اللہ میں سے کسی کو ایسا نہ کرے کہ ہم تو جہنم میں جل جائیں اور لوگ ہماری سکھائی ہوئی باتوں کو لے کر جنت میں چلے جائیں. سلف یعنی پرانے لوگوں میں بعض لوگ جب دوسروں کو صدقے کا حکم دیتے تو پہلے خود صدقہ دیتے، پھر ان کو حکم دیتے، اس لیے لوگ ان کی بات مان لیتے. تو عمل کی بات لکھی ہے کہ صدقہ دے کر جو کام کریں گے نا تو بس بات بھی سچ نکلے گی اور تاثیر بھی پیدا ہوگی، پھر لوگ بھی آپ کی بات پہ عمل کریں گے. یہ کہتے کہ میں نے پڑھا کہ قرون اولیٰ کے ایک وائث نے لوگوں کو غلام آزاد کرنے کا باعث دیا، خود غلاموں نے اس کی فرمائش کی تھی. ایک لمبی مدت میں انہوں نے روپیہ اکٹھا کیا اور اس سے غلام آزاد کروایا. اس کے بعد غلاموں کو آزاد کروانے کا حکم دیا تو لوگوں نے اس کا کہا مانا اور بہت سارے غلام آزادی پا گئے. تو بس یہ ہے وہ نقطہ جو اللہ کرے کہ یاد رہے سب کو کہ خوب اچھا بولتے ہیں اگر آپ، فصیح و بلیغ کلام ہے تو اس کا ٹیکس کیا ہے؟ صدقہ، سچ. یعنی اچھے انداز کی بات نہ کریں، یہ کہیے کہ بات اچھی کرو. تو اس ساری بات میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے؟ گفتگو. میٹھے بول، بولوں میں جادو ہے. ان سارے موضوعات پہ ہم نے بات کی ہوئی الحمدللہ. گفتگو ایک فن ہے، اچھی گفتگو گاڈ گفٹڈ تھنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی دیوی صلاحیت ہے. کوشش کر کے میں آپ بھی لے سکتے ہیں یہ، لیکن کچھ کو تو بائی برتھ گفٹلی ڈونیٹڈ ہوتی ہے کچھ چیز، کیوں وہ سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں یا ان کی آواز میں پیچ و خم ہوتے ہیں، تاثیر ہوتی ہے. اور کچھ کی بات ایسی بیچارے سب سو ہی جاتے ہیں. کچھ کو رلانے کا بڑا اچھا فن آتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اچھا کلام، اچھے لوگوں کی علامت ہے. اور حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں 6023 ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ نیک بات کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے. یعنی کام کرنے میں تو ملے گا، نیک بات کر دیا کریں. جہاں موقع ہو نیکی کی بات کا اس کو اویل کیجئے. پھر آپ اور میں کیا کریں؟ پہلے تولو پھر بولو. فضول گوئی سے بچا جائے، غیر ضروری گفتگو سے خاموشی بہتر ہے، اور خاموشی سے ذکر الہی بہتر ہے. نفاق کی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے؟ تین نشانیاں بڑی دیکھیں اگر، تو بات کرے تو جھوٹ کرے، وعدہ کرے تو خلاف، اور امانت دی جائے تو خیانت کرے. نفاق اصل میں ایک بیماری ہے، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، تو اللہ نے ان کو بیماری میں اور بڑھا دیا. اسی طرح کہنا کچھ اور کرنا کچھ، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے. آپ سورۃ صف کی پہلی آیتوں میں دیکھ لیجئے، لما تقولون ما لا تفعلون، اور جو بات کی سورہ بقرہ 44 کی وہ بھی سچ ہے. اسی طرح وعدہ خلافی کرنا بھی تو ایک جھوٹ ہے نا. سورہ فاطر آیت 40 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بلکہ ظالم لوگ ان کے بعض کو دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس زمانے میں کیا حال ہوگا جو ان قریب آنے والا ہے، جس میں لوگ چھانے جائیں گے. اللہ اکبر، مراد کیا کہ سب اچھے لوگ مر جائیں گے اور خراب لوگ باقی رہ جائیں گے. جیسے چھلنی میں آٹا چھاننے سے بھوسی باقی رہ جاتی ہے، ان کے عہد و پیمان اور امانتوں کا معاملہ بگڑ چکا ہوگا اور لوگ آپس میں الجھ کر اور اختلاف کر کے اس طرح ہو جائیں گے. پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا. لوگوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، اس وقت ہم کیا کریں؟ یعنی خوف لگا نا. تو آپ نے فرمایا، جو بات تمہیں اچھی معلوم ہو اسے اپنا لینا، اور جو منکر ہو بری لگے اس کو چھوڑ دینا، اور تم اپنے خصوصی معاملات اور مسائل کی فکر کرنا، اور عام لوگوں کے مائل کی فکر چھوڑ دینا. یہ ابن ماجہ کی روایت 3957 ہے. کتنا خوبصورت کرائیٹیرین دیا گیا. اصل بات یہ دیکھیں، آج جتنی باتیں بھی پڑھی ہیں نا، اس کا ابھی تک کا جو خلاصہ ہے نا، شک والی چیز کو چھوڑ دو، جس پہ دل زیادہ جمتا ہے وہ لے لو. بس مجھے تو ان ساری باتوں میں سے یہی بات سمجھ آ رہی ہے. اور اگلا ٹاپک تو پھر بہت ہی خوبصورت ہے، آرام اور سکون تو بس جنت میں ملے گا. بات بھی سچ ہے، ہم اس دنیا میں آرام پانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. احمد بن حنبل रहमतुल्लाह से पूछा गया, आराम कब मिलेगा? लिखिए उनका जवाब। बोले, जब तुम अपना पाँव जन्नत में रखोगे तब। जन्नत से पहले सुकून और राहत कहाँ? दुनिया तो हादसा, तलमियों, फितनों, मुसीबतों और आफतों की जगह है। बीमारी है, मायूसी, हुजन और यास, यानी होपलेस हो जाना, यहाँ के निशाने इम्तियाज़ हैं। शायर कहते हैं कि दुनिया की फितरत में कदूरत पड़ी है, फिर तुम इसे कदूरतों और मुसीबतों से खाली क्यों देखना चाहते हो? एक नाइजेरियन शख्स ने बताया कि इसकी माँ रात के तीसरे पहर इसे उठा दिया करती। ये माँओं के लिए एक सबक है। वो कहता कि मैं और आराम करना चाहता हूँ। हर बच्चा यही कहता है ना, बड़े भी यही कहते हैं, बच्चों की तो बात छोड़िए। तो वो कहती, अब आप लिखिए, या आपने अपने बच्चों को कहना है इंशाल्लाह, जो मैरिड है, और जो नहीं है वो फिर जिसको भी कह सके। जब रात का एक ख़ास हिस्सा सोकर बच्चे को उठाना चाहती तो बच्चा कहता, नहीं अम्मी, मुझे और आराम करना है। और फिर माँ का जुमला सुनिए और इसको वाकई गोल्डन वर्ड्स में लिख लीजिए। तो वो कहती कि आराम के लिए ही तो मैंने तुम्हें जगाया है। यानी उठो, कुछ इबादत करो, कुछ नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, बेटे जब जन्नत में जाओगे तब आराम करना। सुभान अल्लाह, आज हमारे बच्चे कितना माइंड करें अगर हम उनको आधी रात को उठा दें। और उलमाए सलफ़ में मसरूक एक नाम के शख्स थे, सजदे में सो जाया करते। लोगों ने कहा, आप पहले आराम कर लिया कीजिए, यानी आपको नींद आई होती है तो आप सजदे में सो जाते। कहते, इसी आराम के लिए तो इबादत करता हूँ। बस जो वक्त अरेब, जो लोग वाजिब को छोड़कर राहत की उजलत में पड़े रहते हैं, हकीकत में वो अजाब की जल्दी में है। उजलत कहते हैं अजाब को। राहत तो अमल सालेह करने, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने और अल्लाह से कुर्बत के लिए वक्त लगाने में है। और नाशुकरा इंसान सारी राहत और सारा हिस्सा दुनिया में ही वसूल कर लेना चाहता है। इसका कहना है, यौमुल हिसाब से पहले ही ए रब हमारा हिस्सा दे दे। और लफ्ज़ उस आयत में कहता है कत्तना, हमारा हिस्सा। बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं इससे मुराद यौम क़ियामत से पहले हमारे हिस्से का रिस्क और खैर है। और इन्हीं के बारे में फरमाया, ये लोग जल्दी मिलने वाली दुनिया को चाहते हैं। युहिब्बुनल आजिला, ना कल की परवाह है ना मुस्तकबिल की फ़िक्र, इसीलिए आज और कल दोनों के घाटे में हैं। इनका काम, नतीजा, इब्तदार, इंतहा सब बेकार है। बात तो सच है। और जिसको कहते हैं ना कि रुलाती है मुझको जवानों की तन आसानी, कितने साल पहले अलामा इकबाल आए थे, और वो जब आए आप ही के ये ब्रिटिश में ही आए थे, तो यहाँ उन्होंने देखा था तो यूथ को देखकर ये जुमले बोले थे कि यूरोप की जो जगह हैं वहाँ मैं देखता हूँ असलाफ़ की किताबें, यानी हमारे मुसलमानों की किताबें इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं, तो होता है दिल मेरा सी पारा, मेरे दिल के 30 टुकड़े हो जाते हैं कि हम मुसलमानों ने जब अपनी किताबें पढ़नी छोड़ी, अल्लाह ने औरों को दे दी, वो सिर्फ उसको एक हिस्ट्री का एक ट्रेजर समझ के संभाल रहे हैं, या पढ़ते भी होंगे। और उसमें वो कहते हैं कि रुलाती है मुझको जवानों की तनासानी। कहीं लॉकडाउन में हम ज़्यादा ही तनासान नहीं हो गए? अब इसको घरों से निकालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहना है पता है, कि जो घर में रहेगा उसको जुर्माना होगा। देखिए ज़रा, ये करना पड़ेगा। वो एक किसी ने वीडियो शेयर की थी, लॉकडाउन के ही दिन थे पिछले महीने शायद, तो दो लड़के यंग सी एज के ना, ऐसे ही अर्ली जैसे होते हैं, तो घर का दरवाज़ा यानी गेट है पाकिस्तान में जैसे होते हैं, तो बाहर बैठे हुए हैं, तो एक कहता है, यार एक दफ़ा लॉकडाउन खुल गया 3-4 दिन घर नहीं आऊँगा, इतने अके हुए थे, और अब देखिए थके हुए हैं। अब हम सिर्फ वसवसों की बुनियाद पे बाहर, यानी जो जिम्मेदारियां निभानी है, जो करने वाले बेचारे कर रहे हैं, डॉक्टर्स ने इन दिनों में नहीं मरीजों को देखा, करने वालों ने किया ना, सिक्योरिटी गार्ड्स और ETBTC सब है। इवन किसी ने भेजा कि कुछ लोग वॉलंटियरली मैयतों को दफन करने का काम कर रहे थे, तो बताते थे कि अपने सगे रिश्तेदार हाथ नहीं लगाते, हमें फ़ोन करते हैं वहाँ डेड बॉडी ये ले आए, तो ये उनको कहते हैं वहाँ से उधर लाए, कहते नहीं हमने उनको हाथ नहीं लगाना। ये कोरोना ने क़यामत दिखा दी। यौम यफ़िर्रुल मरु मिन अख़ी व उम्मिही व अबी, और लंबी कहानी है, सुबह तो पढ़ ही रहे हैं ये कुछ हम, कि दुनिया में अपने छोड़ गए। मौलाना ईदी साहब से किसी ने पूछा कि आप डेड बॉडीज़ को दफनाते हैं, कोई ऐसा वाक़या जो आपको भूला ना हो? कुछ तो होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक दफ़ा हमें फ़ोन आया कि फ़लाँ जगह एक डेड बॉडी है, तो हमारी टीम गई, ये भी थे। तो वो कहते हैं कि वहाँ बड़ा सफ़ेद साफ कपड़ों में एक शख्स, सफ़ेद बाल, सलीके से कंघी की हुई, उसकी डेड बॉडी थी। तो मैं कहते उसको देख रहा था, तो मैं सोच रहा था ये तो कोई बड़ा खाते पीते घर का अच्छा बंदा है। तो ऐसे ही उसके बारे में भी सोच ही रहे थे कि ये अच्छा मुहज्जब इंसान लग रहा है। तो कहते हैं कि हमारे पास गाड़ी रुकी, तो उसमें से एक जवान सा लड़का निकला, तो मुझे एक साइड पे लेके कहता है, कोई लिफाफा था उसमें कुछ पैसे थे, कि आप प्लीज़ ये पैसे इस बुज़ुर्ग के कफन दफन के लिए रख लीजिए, और किसी पैसे से नहीं कीजिएगा, इससे कीजिएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बाप को किसी और के पैसे से दफनाया जाए। और अभी वो कह रहे, बात कर रहे, तो पीछे गाड़ी में बड़ी मॉडर्न सी कोई लड़की थी, जो उसकी बीवी होगी उनके बकौल, तो वो कहने लगी कि नाम लेके कि जल्दी आइए ना, एयरपोर्ट पे जाना है, हमारी फ़्लाइट ना मिस हो जाए। तो उसने कहा कि आज मुझे पता चला कि माल दौलत की हिरस और औलाद को बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले माँ बाप, उनकी औलादें इंसानियत से हाथ खो गई हैं कि अपनी फ़्लाइट के मिस होने के डर से डेड बॉडी इनको दे गए कि आप दफन कीजिए। अब ये मैंने पढ़ा है वाकया उनके नाम से कहीं, तो बात देखिए कि सच है कई हद जगह। बहुत सारे लोग दुनिया में इसी तरह का रवैया अख्तियार करते हैं, यानी क्या करते हैं, युहिब्बुनल आजिला, न कल की परवाह है न मुस्तकबिल की फिक्र, इसीलिए आज और कल दोनों के घाटे में हैं। इनका काम, नतीजा, इब्तदा और इंतहा सब बेकार है। जिंदगी ऐसी ही बनाई गई, इसका खात्मा फना है, इसका पीना कदूरत अमेज है, कदूरत में मैला करने वाला। वो मुतलवन मिजाज है, यानी बड़े मूड चेंज होते हैं, स्विंग होते हैं उनके मूड्स, अभी नेमत अभी लानत, अभी शिद्दत अभी आसानी, अभी सरवतमंदी अभी फ़कर। एक शायर कहता है, हम आवारागर्दी करते हैं, फिर हम में हर एक मालदार हो या मुख्ताज इन गढ़ों की पनाह लेते हैं, जिनका बीज खोखला है और ऊपरी हिस्से पत्थर की सिले हैं, यही इंजाम है। क्या पता चला, समझे ये कौन सा घड़ा, कब्र। यानी सारी जिंदगी माल कमाते रहते हैं, और आखिर में हमें एक घड़ा चाहिए जिसमें हमें डालकर लोग ऊपर से पत्थर की सिलें डाल देंगे। और अल्लाह ताला सच फरमाते हैं, फिर इनको अल्लाह की तरफ लौटाया गया जो इनका हकीकी मौला है, इसी का हुक्म चलता है, वो सबसे तेज़ हिसाब लेने वाला है, असरउल हासिबीन। सूरत अलनाम की आयतें हैं ये 62। ज़रा सा गैप लीजिए और सोचिए। एक राइटर है अबू माजी, कहता है कि तुम फ़कर के शाकी हो, यानी शिकवे करते रहते हो, फ़कीरी बड़ी, गुर्बत बड़ी, जबकि ज़मीन आसमान और सितारे तुम्हारी मलकियत में हैं। यानी जिसकी मलकियत में ज़मीन भी है, आसमान भी है, सितारे हैं, वो बेचारा गरीब कैसे हो सकता है। खेत भी हैं और खलियान भी हैं, फूल और खुशबू भी है, नसीमे सबा और चहकता बुलबुल सब तुम्हारे हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द चमकती चांदी की मानित पानी है, तुम्हारे ऊपर सूरज पिघला हुआ सोना जान पड़ता है, 76 चोटियों में रोशनी एक बार शानदार मकानात बना देती है फिर गिरा देती है। सारी दुनिया तो खुश है तो तुम क्यों उदास हो, सारी दुनिया मुस्कुरा रही है तुम क्यों नहीं मुस्कुराते। अगर किसी पुरानी अजमत पर जो ख़त्म हो गई तुम्हें मलाल है, तो ये हसरत और अफसोस इसे लौटा नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोग वाकई माजी में जीते हैं। हाय, हम इतने अमीर थे, हमारे घर इतनी गाड़ियाँ थी, हमारे अब्बा ये थे वो, अब नहीं रहे, तो आपके अफसोस करने से वापस तो नहीं आएगा ना। और किसी मुसीबत के आने का ख़तरा है तो ये उदासी इसे आने से नहीं रोक सकती। या तुम्हारा शबाब ख़त्म हो गया, यानी जवानी रूठ गई, तो ये थोड़े ही कहो कि ज़माना बूढ़ा हो गया। ज़माना बूढ़ा नहीं होता, देखो कि खाक से क्या हसीन सूरतें झांकती हैं, जैसे कि बोल उठेंगी खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिनहा हो गईं। तो क्या सीखा हमने इसमें, आराम और सुकून तो बस जन्नत में ही मिलेगा। सच तो यही है, दुनिया में भी बहुत आराम और सुकून है, किस में। आप लोगों ने असलाहुल कुलूब पढ़ी, तस्लीमो और रज़ा का जो टॉपिक था ना, उसमें ये जुमला बोला था मैंने कि तस्लीमो रज़ा दुनिया में जन्नत है। जन्नत में जाकर जो सुकून और ख़ुशी मिलनी है ना, वो दुनिया में आप पा लें अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी रह के। जो कहता है सर डाल के कहिए जी अल्लाह ठीक अल्लाह बिल्कुल अच्छा, आपने जो किया ठीक किया, जो कहा सही कहा। वो कहते एक बुज़ुर्ग था, उसको कुरान नहीं पढ़ना आता था, बूढ़ा था, शौक़ बड़ा था कि मैं भी दूसरों की तरह कुरान पढूं। तो कुरान पाक खोलता और उसके सामने सफ़े खुलते, ਹਰ ਲਾਈਨ ਪੇ ਉਂਗਲੀ ਫੇਰਤੇ ਹੋਏ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਜੋ ਆਖਿਆ ਹੀ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਹੀ, ਰੱਬ ਜੋ ਆਖਿਆ ਹੀ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਨੇ ਕਹਿ ਸੱਚ ਕਹਿ। ਆਪ ਬਤਾਏ ਹਾਂ ਭਲਾ ਉਸਕੋ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਕਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਾ ਹੋਗਾ? ਉਸਨੇ ਤੋ ਆਮੰਨਾ ਵੋ ਸਦਕ ਨਾ ਕਹਿ ਦੀਆ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੀਏ। ਆਪਕਾ ਰੱਬ ਆਪਸੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਪਾਂਚ ਚੀਜ਼ੇਂ ਹੈਂ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਆਰਾਮ ਔਰ ਸਕੂਨ ਪਾਣੇ ਕੇ ਅਸਬਾਬ ਮੇਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਫਿਰ ਅਮਲ ਸਵਾਲੇ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਆਪਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਲੀਏ ਵਕਤ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਆਪਕੋ ਕਿਤਨਾ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਏ, ਆਪਕੋ ਕਿਤਨਾ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਏ, ਬਸ ਉਤਨਾ ਵਕਤ ਲਗਾ ਦੀਜੀਏ। ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਬੜਾਤੇ ਜਾਏ, ਆਪਕੇ ਆਰਾਮ ਔਰ ਸਕੂਨ ਮੇਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਹੋਤਾ ਰਹੇਗਾ।